साकार मात पिता की कर्म भूमि पर साकार के हस्तों से जन्मे और पले आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल भाई जी हमारे मध्य आए हैं। हम फरिश्ता स्वरूप से ताली बजा के आपका अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है भाई साहब। एक यूनिक आत्मा है जिनका बड़ा अनोखा रोल इस यज्ञ में चला। 1962 में आप बाबा के सामने ज्ञान में आए, बाबा को पहचाना, तब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे थे। इंजीनियरिंग करते ही आप जॉब में गए, पर बाबा का ये भी एक गोये प्लान था कि आपको इंजीनियर के रूप से एक बीके बना करके बाबा ने अपना काम कराना था। आसाम और गुजरात दो बड़ी स्टेट्स के बहुत सारे सेंटर्स खोलने का बहुत बड़ा निमित्त कारण बने। बहुत समय अहमदाबाद से रहकर और आगे गुजरात में अनेक सेंटर्स खोलने और आगे बढ़ाने का भी आप कारण बनते रहे। और 1996 में जॉब पूरा करके आप संपूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित हो गए और ज्ञान सरोवर एकेडमी के आप कोऑर्डिनेटर हैं, एकेडमी कोऑर्डिनेटर। जब से ज्ञान सरोवर बना है बहुत सुंदर देख रेख आप उसकी कर रहे हैं, न सिर्फ उस एकेडमी के कोऑर्डिनेटर लेकिन इंजीनियर्स विंग जिसके द्वारा स्वर्ग का निर्माण होना है। इंजीनियर्स के बिना स्वर्ग कौन बनाएगा, पुष्पक विमान कौन बनाएगा, हमारे सोने के महलों को कैसे कौन डिजाइन करेगा। तो सारा काम तो बाबा ने इंजीनियर्स को दिया हुआ है। तो आप इंजीनियर्स विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और इस विंग के द्वारा आपने बाबा का इतना नाम बाला किया है जो आपको तीन बहुत विशेष बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं। यूएन की तरफ से भी आपको विशेष सम्मानित किया गया। इस पर्यावरण की सेवाओं से संबंधित भारत सरकार ने भी आपको पर्यावरण श्री का अवार्ड और खिताब दिया है। और हाँ, जरूर जोर से ताली बजाएं। तीसरा अवार्ड राजस्थान सरकार की तरफ से भी आपको पर्यावरण संबंधित कार्य करने पर बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, बाबा जो अव्यक्त हुए, जब बाबा अव्यक्त हुए तब कुछ दिनों आप यहीं पर मधुबन में थे और आपने इन्हीं आँखों से जीवंत चरम चक्षुओं से बाबा की कर्मातीत अवस्था को देखा और साफ दिखाई पड़ता है कि बाबा के सानिध्य से बाबा की शक्तियाँ कैसे आपके जीवन में काम कर रही हैं और आप बाबा का नाम रोशन कर रहे हैं। विषय भी बहुत सुंदर आपने सिलेक्ट किया है, मन जीते जगत जीत, जिसका योग में बहुत गहरा संबंध है। तो भाई साहब हमें इस विषय पर विशेष प्रकाश डालेंगे। भ्राता मोहन सिंगल,
ओम शांति। जब हम जीत शब्द को सुनते हैं, जीत अर्थात विजय, विक्ट्री, तो मन में कैसी भावनाएं पैदा होती हैं? खुशी, आनंद, उमंग, उल्लास, और ऐसी ही भावनाएं सदा जीवन में रहे, इसीलिए बाबा ने कई बार कहा है मन जीते जगत जीत। हम सब जगत जीत बनने का लक्ष्य तो रखते ही हैं, क्योंकि हम सबका लक्ष्य ही है। क्या लक्ष्य है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, जगत जीत है ना ये। तो उस जगत जीत की सबसे सहज सुंदर विधि है मन जीत। मन को जीत लो, ऑटोमेटिकली जगत जीत बन जाएंगे। इसीलिए जगत जीत, इतना बड़ा जगत, पुराने जमाने में भी कहा करते थे ना, जगत जीत बनने के लिए क्या किया करते थे राजा महाराजा, कौन सा यज्ञ रचते थे? अश्वमेघ यज्ञ रचा करते थे। और बस अश्वमेघ यज्ञ रचकर और घोड़ा छोड़ देते थे, और सब जानते हैं वो घोड़ा विजयी होकर आता था, माना जाता था ये राजा चक्रवर्ती राजा हो गए, और कोई अगर रास्ते में पकड़ लेता था उसे युद्ध करना होता था। तो ये सब इसी समय की ही कहानियां हैं। ये बाबा ने इतना बड़ा जो यज्ञ रचा है, और यज्ञ रचकर बाबा ने कौन सा घोड़ा छोड़ा है? हम सभी यज्ञ, अपना अपना यज्ञ कर रहे हैं ना, यही तो अश्वमेघ यज्ञ है। नाम ही अश्वमेघ, अश्व माने घोड़ा। तो इसीलिए कौन सा घोड़ा हमने छोड़ा हुआ है इसके पीछे पीछे, और बाबा ने जो ये इतना बड़ा यज्ञ रचा है, वो राजा छोड़ता था घोड़ा, उसके पीछे राजा की सेना चलती थी। तो बाबा ने यज्ञ रचा, उस बाबा की सेना के हम सब उसके ही बाबा के सैनिक हैं, महारथी हैं, योद्धा हैं, जो कुछ कहें। क्योंकि ये हमारा जो घोड़ा छूटा हुआ है, सामने कौन सी है जो इस घोड़े को पकड़ने को तैयार है? कौन है? माया है। माया क्या है? क्या है माया? कमजोरियां। और माया में और विघ्न में क्या अंतर है? विघ्न आती हैं और माया आते हैं, क्या अंतर है? कमजोर संकल्प। विघ्न बाहर से आता है और माया अंदर से आती है, ये एक सूक्ष्म अंतर। कई बार हम दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन जो विघ्न आते हैं उसके परिणाम स्वरूप जो संकल्प हमारे मन में पैदा होते हैं, और वो संकल्प विकल्प में युद्ध होती है, और अगर उन संकल्पों से हम हार जाते हैं, वो माया के कमजोर, माया यानी कि कमजोर संकल्प जैसा बताया। तो इस कारण से हमें ये देखना है, ये जो बाबा ने घोड़ा छोड़ा हुआ है, ये किसी भी तरह माया के जो दूसरे अपोजिशन सेना है, रावण की सेना है, उससे हमारी सेना ये हार न खाए। तो इसीलिए मन जीते जगत जीत बाबा ने जो कहा। और अभी तक इतने सारा हमारा बड़ा यज्ञ है, बाबा मामा से लेकर इतने सारी हमारी दादियां हैं, दादा हैं, सीनियर भाई बहन हैं सारे, तो कौन अभी तक ऐसा विजेता रहा है जो मन जीते जगत जीत बन गया? कौन कौन रहे हैं, कितने लोग रहे हैं? हाँ बताओ, पुराने पुराने काफी दिख रहे हैं। नहीं, वो तो अभी गए नहीं है ना, जो चले गए उनको ही ज्यादा बोलेंगे जो एडवांस पार्टी में। और देखो अभी तक गए तो बहुत हैं, है ना, लेकिन जो भी गए हैं वास्तव में बहुत पुरुषार्थ की चरम सीमा तक पहुंच के गए हैं, लेकिन जो अंतिम सीमा है, जो पहले तो बहुत आता था, जहां जीत वहां जन्म, इसका भी एक रहस्य, आज का तो वो विषय नहीं है, लेकिन जहां पर अभी तक जितनी आत्माएं गई हैं उन सब में एक ही आत्मा है जो पूरा मन जीते जगत जीत होके गई है। कौन? ब्रह्मा बाबा। क्योंकि बाकी सभी आत्माओं ने पुनर्जन्म लिया है, गर्भ में प्रवेश करा। भले बाबा ने ये कई बार बताया, उन्होंने कोई उसके कारण ये सेवा के कुछ जो पार्ट रहा है इस कारण जन्म लिया है, कोई कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए नहीं। लेकिन साथ ही साथ हम सब जानते हैं कि जहां पर जन्म होगा नए कर्मों का हिसाब किताब बनेगा, पुरानों का भी हिसाब किताब चुकतू होगा। तो ब्रह्मा बाबा ही एक ऐसी आत्मा है जो सूक्ष्म वतन में इंतजार कर रहे हैं और जिन्होंने जन्म नहीं दिया, तो उनके साथ साथ चल के हम ये देखते चलें कि हम कैसे मन जीते जगत जीत बनते जाते हैं। तो जैसा बहन जी बता रहे थे परिचय में, बाबा को 62 से ज्ञान में आए, लेकिन अंतिम क्षणों में बाबा ने अपने पास बुला लिया। हम आसाम में थे जनवरी मास में और कोई मनचित इधर आने का नहीं था, लेकिन बाबा ने ऐसा मैसेज भेजा कि उससे तुरंत ही प्रोग्राम बना और बाबा के संदेश अनुसार प्लेन से आए और यहां पर 17 जनवरी की सुबह पहुंच गए। तो 17 और 18 जनवरी को बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था देखने को मिलाई। तो उसके अंदर क्या क्या देखा, कुछ उसके आधार पर हम लोग और दृढ़ निर्धार कर सकते हैं। तो एक तो उन दिनों में ये देखा, दो दिन में बाबा से लगभग 7-8 बार मिलना हुआ, क्योंकि और पार्टियां थी नहीं। कभी बाबा यहां मॉर्निंग में टहलते थे, टहलते हुए मिल जाते थे, झोपड़ी में बाबा ने बुलाया, कमरे में बुलाया, हिस्ट्री हॉल में सुबह शाम क्लास होती थी वहां मिलते थे आदि आदि। लेकिन अब की बार के मिलने में और पहले के मिलने में एक विशेष अंतर देखा। क्या अंतर देखा? पहले जब भी बाबा मिलते थे, बाबा से मिलके हम लोग बताया करते थे अपनी बात, सेवा की बात, पुरुषार्थ की बात, अपनी योग की स्थिति की बात, और बाबा उसमें करेक्शन दिया करते थे, कोई प्रश्न होता था समाधान देते थे। लेकिन इन दो दिनों में क्या देखा कि बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा बस ऐसे दृष्टि दिए, दृष्टि दे के बाबा कहते थे, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। यानी कि पहले प्रश्न बताने की जरूरत होती थी और हमेशा बताया करते थे, लेकिन इन दो दिनों में एक बार भी हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ी, बाबा ये वहां सेवा चल रही है ऐसा, ये इसके लिए आपका क्या राय है, बाबा ये पुरुषार्थ है या ये समस्या आती है, कुछ नहीं। बस दृष्टि दी, मन के भावों को बाबा ने पढ़ा। तो एक कर्मातीत अवस्था का ये लक्षण होता है कि वो उसके मन की स्थिति इतनी मन जीते जगत जीत की हो, मन जीते स्थिति हो जाती है कि मन के अंदर कोई भाव नहीं होता और इस कारण से ही वो दूसरे के भावों को तुरंत पढ़ लेती है, और केवल पढ़ती नहीं उसका तुरंत समाधान भी देती है। तो ये एक है, और जो बाबा ने हमेशा कहा है, और ये कब स्थिति होती है, जब व्यक्ति स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या हो जाता है, अपनी कोई इच्छा नहीं होती तो दूसरे की इच्छा को हम तुरंत पढ़ सकते हैं। तो एक बाबा की ये स्थिति, और इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है कि हमारे मन के अंदर कोई भी, अभी बाबा ने जैसे सर्टिफिकेट हम बच्चों को दिया हुआ है मन के संकल्पों के लिए, बाबा ने हम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट दिया हुआ है जो दे दिया है बाबा ने? कई बार मुरली में बाबा कहते भी हैं, अपना सर्टिफिकेट याद होता है तो खुशी आनंद उमंग उल्लास होता है ना, तो कौन सा बाबा ने इन जनरल सर्टिफिकेट दिया है कि अभी बच्चों के विकारी संकल्प तो नहीं चलते, लेकिन कैसे संकल्प चलते हैं, व्यर्थ संकल्प अभी भी चलते हैं। तो देखो, विकारी संकल्प नहीं चलते हैं ये सर्टिफिकेट भी दे दिया, तो हम अपने को एक बार ये चेक करते रहें, क्योंकि बाबा ने तो जनरल बोल दिया, हम अपने को चेक करते चले, मेरे में विकारी संकल्प तो कोई नहीं है। पहली स्टेज मन जीते जगत जीत की है कि विकारी संकल्पों को जीतना, और जब विकारी संकल्प हमारे मन से बिल्कुल निर्मूल हो जाते हैं, चले जाते हैं, तब बात में व्यर्थ संकल्पों को जीतने का प्रश्न आता है। तो इसलिए एक तो ये चेक करते चले मन जीते जगत जीत बनने के लिए विकारी संकल्प, क्योंकि मन का काम ही है संकल्प करना, मन को हम रोक नहीं सकते संकल्प करने से, लेकिन मन की दिशा बदल सकते हैं। तो इस कारण से, और बाबा ने व्यर्थ संकल्पों की भी बड़ी अच्छी परिभाषा दी है, गुलजार दादी यहां कुछ दिन पहले क्लास करा रहे थे हम मधुबन निवासियों की भट्टी की, तो दादी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बाबा, वो तो समय प्रति समय यज्ञ की भी कोई बातें पूछने के लिए दादी वतन में जाते रहते हैं, तो दादी ने कहा कि बाबा ने कहा है कि अभी ना, अभी के समय के प्रमाण व्यर्थ संकल्प कौन सा है, अभी के समय के प्रमाण, हम सब पुरुषार्थी है इस मार्ग में, अभी के समय के प्रमाण कौन से व्यर्थ संकल्प हैं, और जो संकल्प हमारी इच्छा के विरुद्ध चले वो संकल्प जो है ना व्यर्थ है। फॉर एग्जाम्पल, हम योग में बैठे हैं, ठीक है, योग में हम बैठे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, बीच में मानो कोई सेवा का संकल्प याद आ गया, अरे वहां जाके वो सेवा करनी है बाकी है, या कोई और ज्ञान की बात आ गई, विचार सागर मंथन की बात आ गई, बैठे हैं याद में लेकिन वो बात याद आ गई, कोई धारणा से संबंधित बात, यानी ज्ञान योग सेवा धारणा, अगर हमें याद में योग में बैठे हैं और हमारा लक्ष्य ज्वालामुखी योग की तरफ चल रहा है, अगर ऐसे में हमें ज्ञान का भी कोई संकल्प आ गया, सेवा का संकल्प आ गया, तो वर्तमान समय के प्रमाण वो भी व्यर्थ संकल्प है। देखो बाबा कितनी हाइट तक हमें ले जाना चाहता है, साधारण बात वो वैसे देखा जाए विकारी संकल्प नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जिस समय संकल्प को जो ऑर्डर करें संकल्प बस उसी दिशा में चले। और बाबा ने क्या किया इसके लिए, जब बाबा को भी ये परिस्थिति फेस करनी पड़ी, जब बाबा यज्ञ में शुरू में आए 1936-37 में, हम सब ने सुना है, क्या सुना है, बाबा के दो डायरियां थी, बाबा ने कौन कौन सा अभ्यास पक्का किया था, मैं आत्मा हूं, लेकिन जो भी अभ्यास पक्का किया उसका कुछ रिजल्ट दिखना चाहिए ना, मानो मैं भी कहूं मैंने भी मैं आत्मा हूं का अभ्यास पक्का कर लिया, उसका परिणाम क्या, रिजल्ट क्या, मानो मेरी तबीयत खराब होती है कुछ है तो थर्मामीटर से देख लेंगे, हाँ भाई 98 नहीं है 101 है तो ये फीवर है, इसी तरह तबीयत कुछ बेचैनी हो रही है, ब्लड प्रेशर देखा भाई 120-80 की बजाय मानो 180 प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर है, उससे पता चल, इंस्ट्रूमेंट से पता चल जाता है क्या तबीयत खराब है। ऐसे ही हमारे संकल्प पे या हमारे पुरुषार्थ में हमने कहां तक विजय प्राप्त की है, कोई मेजरमेंट तो होना चाहिए, जैसे ऑडिट होता है, ऑडिट में पता चलता है भाई अकाउंट का ये चेकिंग करी है, ऑडिट हुई है कि यहां पर कुछ गड़बड़ दिखती है, ये ठीक है, ऐसे हमें टाइम टू टाइम अपना ऑडिट खुद करना चाहिए, अपने पुरुषार्थ का ऑडिट। तो इसके लिए बाबा ने शुरू में तो यही पक्का किया मैं आत्मा हूं, तो उसका परिणाम क्या हुआ, क्योंकि साकार बाबा के साथ हम कई बार रहे, बहुत बार मिलना हुआ, और बाबा क्या जैसे ही बाबा से मिलते थे हम ना, हम लोग कोई भी पार्टी आती थी, बाबा ऐसे हाथ फैला, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन। वो बाहर चित्र देखा है जो अंदर घुसते ही, तो ये प्रैक्टिकल में ये होता था। और बाबा दृष्टि देते थे, और जैसे ही दृष्टि देते थे, पड़ती थी, वो व्यक्ति भी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाता था, क्योंकि बाबा ने अभ्यास पक्का किया था विदेहीपन का, अशरीरी का। तो जैसे ही उसके नैनों में बाबा ने देखा, उसकी तरफ दृष्टि पड़ी, वो विदेही हो जाता था। कैसे पता चलता था विदेही हो गया? हम लोग बाबा के गए पांव में, विदेही हो गए, बस वो स्थिति का अनुभव। उस समय तो अशरीरी क्या है वो जानते भी नहीं थे, लेकिन स्थिति का अनुभव होता था, देह से न्यारेपन का, एकदम हल्का, फरिश्ते का, एकदम पॉजिटिविटी का। पता कैसे चलता था? थोड़ी देर के बाद बाबा ऐसे थपथपाते थे, आओ बच्चे, आओ आओ, मतलब कोई आत्मा शरीर छोड़ के जाती नहीं है, लेकिन कॉन्शियसनेस विड्रॉ हो जाती है, तो देह भान पूरा विड्रॉ हो जाता था, तो पता ही नहीं चलता था। फिर बाबा जब ऐसे थपथपा के कहते थे, फिर हम लोग देह में जैसे आने का पुरुषार्थ करते थे, इच्छा नहीं होती थी, लेकिन जैसे देह में आते थे, बाबा फिर टोली खिलाता था, हालचाल पूछता था, नाम और सब कुछ पूछ के, फिर बस उस स्थिति का अनुभव कराते थे बाबा। एक जाता था, फिर दूसरा आता था, दूसरा भी ये अनुभव, हरेक को ये अनुभव करता था अशरीरीपन का, विदेही का। क्यों? क्योंकि बाबा ने उस स्थिति का अनुभव किया हुआ था, इस कारण से बाबा का जो ऑरा, जो वाइब्रेशन, जो नैनों से लाइट माइट निकलती थी, वो दूसरे को भी अशरीरी कर देती थी। तो मैं भी अपने को ये चेक करता चलूं, जो भी हमारा पुरुषार्थ है, कि मैं भी जिस आत्मा के संपर्क में आते हैं, जिस आत्मा को दृष्टि दी, जो हमारे वाइब्रेशन है, जो हमारा ऑरा है, वो इतना पावरफुल है कि दूसरी आत्मा भी एकदम विदेही अशरीरीपन का, स्थिति का, फरिश्ते का अनुभव करती है। या जब हम जैसे देह विमान में होते हैं, क्रोध है या कोई है, तो दूसरा भी उस स्थिति में देह विमान में आ जाता है। ऐसे जब हम अशरीरी होंगे ना, तो दूसरे को ऑटोमेटिकली हमारे इस सूक्ष्म स्थिति का ये बाबा सबको अनुभव कराता था। और ये किस पर आधारित है? मन के ऊपर। हमारी स्थिति बस जब यही कि मैं आत्मा हूं, अशरीरी हूं, निराकारी हूं, विदेही हूं, पहले संकल्प है, फिर उस स्थिति में जब स्थित हो जाते थे, तो फिर दूसरे भी उसका अनुभव करते थे। एक ये चेक करते चले, क्योंकि अभी जैसा समय आ रहा है, बाबा ने कहा है, उस समय भाषण करने का, बोलने का, ज्ञान सुनाने का वो नहीं होगा समय। उस समय के लिए हमें इस स्थिति का ही अनुभव, हम लोगों ने वो स्थिति का बाबा से कई बार मिले, और अंतिम दिनों में तो ये प्रैक्टिकल अनुभव किया। अगली बात, तो एक मन जीते जगत जीत का ये, कि हमें कहने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अंत समय क्या होगा, लोग आएंगे और ऐसी परिस्थितियां होंगी कि वो कुछ भी न बोल सकेंगे, बस अब बाबा ने कहा है, रोती हुई आत्मा आए, आपकी स्थिति को देखे और परिवर्तन हो जाए, आपकी ऐसे ज्वालामुखी स्थिति हो, और ज्वालामुखी योग बोलते हैं ना, ज्वालामुखी नाम सुना है, कैसे पढ़ा ये नाम? हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, वहां एक मूर्ति के मुंह से हमेशा ज्वाला निकलती रहती है, देवी की मूर्ति से ज्वाला जी का मंदिर प्रसिद्ध हो गया, तो इसीलिए ज्वालामुखी योग, मुख से ज्वाला निकलती है। और वहां के लोग बोला करते थे कि भाई ये तो ज्वाला मेरे दादा, परदादा, उनके भी दादा, उस टाइम से निकल रही है, और लोगों की बड़ी भावना थी। ये तो बाई चांस प्रसंग आया तो दो मिनट में बता देते हैं, और ये तो कभी बुझती नहीं, और वाकई बुझती नहीं थी। तो मैं तो जिस कंपनी में था ना, जॉब करता था, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग किया था धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से, और ONGC ज्वाइन किया था, ऑयल एंड नेचुरल गैस कर, तो उसमें हम लोगों को हिस्ट्री बताई जाती थी, कई केस हिस्ट्रीज, तो उसमें ये बताया गया था ज्वालामुखी में ना, तो ONGC वालों ने सर्वे किया, उधर हिमाचल प्रदेश का और देखा कि यहाँ तो गैस के भंडार हैं, काफी नीचे गैस है। तो वो जब वहां गए, उन्होंने साइंटिफिक रीति से सोचा समझ गए, तो उन्होंने वहां के लोगों को बताया कि भई ये तो गैस निकल रही है ज्वाला। तो लोगों को बड़ा उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची कि नहीं नहीं ये तो हमारी कुल देवी है और इस देवी के मुंह से तो 150-200 साल से ज्वाला निकल रही है, कभी भी नहीं, आप चाहो तो इसे बुझा के दिखाओ। वाकई बुझती नहीं थी क्योंकि कंटिन्यूस गैस निकलती थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, और फिर उन्होंने क्या करा, सर्वे किया, जो चैनल था ना उसके अंदर उन्होंने एक वाल्व लगाया और वहीं के ही सरपंच को बुला के कहा, सब लोगों को बुला के देखो हमारी भी, हम भी हिंदू हैं, हमारी भी भावनाएं हैं देवी के प्रति, लेकिन वास्तव में ये एक्चुअली गैस है, आप आओ आप खुद देखो, ये वाल्व है इसको घुमाओ। उसको घुमाया, गैस निकलनी बंद हो गई, वाल्व क्लोज, तो बुझ गई आग। फिर उसे कहा अब उल्टा घुमाओ, फिर वो घुमाया गैस निकलने लगी, उसे जलाया फिर गैस जलने लगी। तो इस बात से क्या शिक्षा मिली कि कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी उसका महत्व है। लगातार अगर एक सेकंड भी ना वो कंटिन्यूटी नहीं रहती है, वो विच्छेदित हो जाती है, टूट जाती है ना। तो जैसे बाबा ने कहा खंडित मूर्ति का कोई, वो तो म्यूजियम के लिए होती है, उसको पूजा नहीं जाता, ऐसी हमारी याद भी जो है ना वो खंडित ना हो, कैसे रहेगी, सोचने की बात है। लगातार याद, तो याद का ये मतलब नहीं कि हम बिल्कुल कंटिन्यूअस, अगर हम पॉजिटिविटी में हैं, किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं है, किसी के लिए ऐसी भावना नहीं है ईर्ष्या की, द्वेष की, बदले की भावना, और कोई भी ऐसी निगेटिव भावना नहीं है, ये भी याद की श्रेणी में आता है। भले उससे उतने याद विकर्म भस्म विकर्म नहीं होते उस याद से जितने की ज्वालामुखी याद से या अखंड याद से होंगे, लेकिन उसमें विकर्म बनते भी नहीं है। अक्सर करके हमें पता नहीं चलता, सारे दिन में कई ऐसे काम हो जाते हैं विकर्म बन जाता है। किसी ने कुछ कहा और उसकी तरफ क्रोध से हमने देखा, बोला भी नहीं, आंख लाल लाल की या कुछ, बाबा ने तो ये भी बताया इसमें भी आपके विकर्म बन गए। कई चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन जब विकर्म बनना बंद होगा वो कंटिन्यूटी से होगा। इसीलिए देखो जब कोई सीरियस पेशेंट होता है ना, उसे भी ले जाया जाता है हॉस्पिटल में, सबसे पहले क्या करते हैं, उसको ड्रिप चढ़ा देते हैं, ड्रिप लगाया है? कोई भी ऑक्सीजन वो भी कंटिन्यूअस, ड्रिप लगाया वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉप कंटिन्यूअस वो चलती रहे। कोई भी चीज की कंटिन्यूटी का महत्व है। इस रीति से एक बाबा ने ये बताया कि हमारे पुरुषार्थ में भी ना हम अपनी जीवन रेखा देखें। ये महत्व तो नहीं है कि हम कितने साल से ज्ञान में हैं, कोई 50 साल से ज्ञान में है, कोई 40 साल से है, कोई 80 साल से भी है, यज्ञ की हमारी शुरुआत है, आदि रतन जो है उसके भी है। लेकिन बाबा ने क्या कहा है, एक बाबा की मुरली माला के ऊपर चली थी, बाबा ने कहा था माला का ना, कोई 108 की माला नहीं है बल्कि कई लड़ियां बाबा जोड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात माला की विशेषता क्या है, बाबा ने कहा ये अंत समय प्रत्यक्ष होगा, जब माला के मणके प्रत्यक्ष होंगे ना उस समय ये प्रत्यक्ष होगा, अरे ये आत्मा तो अभी 10 साल पुरानी है, सिर्फ 8 साल पुरानी है, लेकिन ये 108 में आ गई, माला का मणका बन गई। और बहुत 60 साल 70 साल 80 साल वाले वो भी नहीं बने, क्यों, क्योंकि काउंट क्या करता है हमारे जीवन में, हमारी जीवन रेखा कब से शुरू हुई है, हमारी ब्राह्मण जीवन रेखा। भले हमारे शरीर की आयु हम ज्ञान में आए तब से हमारी रेखा शुरू होती है। ब्रह्मा बाबा की भी हाथ की रेखा ना बताया करते हैं, 60 साल की आयु जीवन रेखा में भी थी, उसमें भी लिखी हुई थी, सब कहते थे बाबा आपकी आयु 60 वर्ष, लेकिन योग से बाबा ने आयु बढ़ाई। जब से वो ब्रह्मा बना, पहले तो दादा लेखराज था, लेकिन शिव बाबा ने प्रवेश किया तब से जीवन रेखा शुरू हुई। और याद के बल से, योग से, समर्पणता से बाबा ने आयु 93 तक कर ली। और तब तक बाबा संपूर्णता को प्राप्त हो गए। तो भाव क्या है कहने का कि हम ये ना देखें, हाँ बड़ों के लिए रिस्पेक्ट रिगार्ड, उनके जीवन के अनुभव से सीखना वो सब कुछ हो, लेकिन हम ये ना सोचे कभी कि अरे भाई मैं कैसे माला का मणका बनूंगा, ये तो 80 साल वाले हैं, 60 साल वाले हैं, मैं तो अभी 15 साल का हूं, ये समर्पित है, मैं तो गृहस्थी हूं। नहीं, बाबा ने ये कहा था, एक मुरली में बहुत विशेष मुरली थी, विशेष रत्नों के सामने ही बाबा चला रहे थे, देखो ये माला में ना, मेरी माला की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें हर प्रकार के बच्चे हैं। इसमें वो बच्चे भी हैं जो आदि रतन है यज्ञ के शुरू के, और वो भी है जो नए से नया बच्चा भी है। माला में, माला में मेरे समर्पित बच्चे भी हैं तो इसमें गृहस्थी वाला भी है। माया में कुमार है तो अधर कुमार भी हैं, कुमारियां हैं तो अधर कुमारियां भी हैं, और माला के अंदर भारतवासी हैं तो विदेशी भी हैं। और बाबा ने क्या क्या बताया, माला में सब प्रकार के बच्चे हैं, इसीलिए माला की विशेषता, इसीलिए कहा गया भगवान जो है ना वो न्यायकारी है। नहीं तो भगवान अगर सारे के सारे अपने 1936 के ही रत्नों को ले ले तो न्यायकारी कहां हुआ, फिर तो हमारे आपका लोगों का किसी का कोई स्कोप ही नहीं रहा। लेकिन बाबा ने ओपन छोड़ा, और इसमें एक भी बच्चा होगा वो भी नए से नया भी होगा। क्यों? क्योंकि जीवन रेखा तब से शुरू होती है ब्राह्मण जब से बने, और ब्राह्मण बनने के बाद अगर हमारी 100 गुना कमाई होती है हर पुरुषार्थ से, अगर कोई विकर्म हो गया ना 100 गुना गवाही भी है, गवा भी देते हैं। वो सांप सीढ़ी का खेल होता है ना लूडो का, सीढ़ी से चढ़ गए और सांप ने डसा तो बिल्कुल किनारे भी आ गए, ऐसे ही इसमें गवाही भी है। तो इसमें हमें देखना है कि हमारा इसमें गवाना ना हो, ऐसे रतन भी निकलेंगे, और जब अंत समय प्रत्यक्षता होगी तो सब चौंक देखते रह जाएंगे। इस कारण से बाबा ने कहा है, देखो अभी भी 80 साल के भी रतन हैं जो यज्ञ के आदि के हैं। अब बाबा कितने साल में संपूर्ण बना, कितने वर्ष में, 33 ईयर्स में, 33 वर्ष में। कहां 80 साल के भी रतन है, यज्ञ को 80 साल हो गए, कहां 33 साल में बाबा संपूर्ण बन गया। 1936 में ज्ञान में आए, 1969 के शुरू में ही संपूर्ण बन गए। क्यों? क्योंकि जब से बाबा की ब्राह्मण जीवन की रेखा शुरू हुई, जीवन ही संपूर्ण परिवर्तित हो गया, कंप्लीट, फिर पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। तो एक ये हमें देखते चलना है, जब से मैं ब्राह्मण बना हूं उसके बाद से मुझे अपना जीवन देखना है, कोई विकर्म ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जो मुझे पीछे की तरफ ले जाए, दूसरों की तरफ देखना ही नहीं। इस कारण से बाबा ने ये जो देखते चले, बाबा संपूर्ण हो गए। तो हमें किस तरीके से, और हमने उस दिन क्या देखा, 17-18 जनवरी को, एक तो बाबा का ये देखा, मन में जो भाव आते थे बाबा तुरंत बता देते थे, अपना मन जीत की स्थिति, खुद इच्छा मात्रम स्थिति हो गई, इसने दूसरे की इच्छा को बाबा तुरंत ही पढ़ लेते थे। और ये हमने अनुभव अंतिम दिन भी किया, 18 जनवरी को रात्रि क्लास हो रही थी, रात्रि क्लास में हम भी सामने बैठे हुए थे, बाबा क्लास करा रहे थे। अब बैठे बैठे एकाएक हमारे मन में संकल्प आया, बाबा हमारे लिए कुछ बोले। देखो संकल्प ही आया, हमारे लिए कुछ बोले, तो बस जैसे लौकिक में कहते हैं भक्त के मन में संकल्प उठा, और भगवान क्या करते थे, क्या निकलता था भगवान के मुंह से, बस एक ही अक्षर। तो बस ऐसे ही हम भी तो बाबा के जन्म जन्मांतर के भक्त हैं, इन द सेंस कि जब बाबा कृष्ण के रूप में होगा हम सब देवी देवता, जब कृष्ण की मूर्ति की पूजा होगी हम भी कोई भक्त होंगे, कृष्ण के रूप में अपने मन के देवता को पूजेंगे आदि आदि। तो ये जो है संकल्प आया, तुरंत बाबा को कैच हुआ। क्यों? क्योंकि बाबा तो संपूर्ण स्थिति में था, अपने मन में कोई भी ऐसे संकल्प नहीं थे, अपने तो दूसरे के संकल्प को कैच किया और बाबा ने तुरंत ही हमारा नाम लेके उस 18 जनवरी की रात्रि क्लास में कुछ महावाक्य उच्चार दिए जो आज तक भी हमारे लिए गाइडिंग स्टार्स हैं। है? बाबा ने बोला, मैं सम्मुख ही बैठा हुआ था कि देखो ये बच्चा मोहन है, बहुत मीठा बच्चा है, कभी भी किसी की निंदा नहीं करेगा। उस दिन बाबा की मुरली भी चल रही थी, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। तो हमने अपने को झांक कर की देखा कई बार कि अज्ञान काल से भी हमें मतलब निंदा करने की बात तो दूर रही, कोई अगर हमारे सामने आके किसी की कोई बात कहता है ना तो हमें बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि आज हमारे सामने वो दूसरे की निंदा कर रहा है, कल दूसरे के सामने हमारी भी निंदा करेगा, मतलब वो उसका संस्कार है। तो ये संस्कार बचपन से ही नहीं है, और बाबा ने जब बोल दिया तो स्टैंप लग गया कि देखो ये बच्चा मोहन है, बहुत मीठा बच्चा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो लास्ट लाइन बोली, संपूर्ण बन जाएगा अंत तक, ऐसा बोल के बाबा बस, मतलब ये बात है। तो अपने को हम सब बच्चों को देखना है, चेक करना है, अंत तक संपूर्ण बोले ये था, अंत तक संपूर्ण बन जाएगा। और अंत तक तो हमें सबको अंत तक देखना है, अंत में ही संपूर्ण बने, क्योंकि पहले अगर कुछ बने तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। खास ये एक बात हुई, ये तो रिफरेंस बहन जी ने पूछा बताया, नहीं तो अपने मुंह में या मिट्ठू बनने वाली बात तो ना, मिट्ठू कौन बोलता है, तोता होता है ना, नल पर नहीं बैठना, तो ऐसा हम बच्चों को नहीं बनना है, ये तो कहा, नहीं तो हम अपने आप कभी भी अपनी क्लास में ऐसी बात नहीं बताते। लेकिन नहीं, थैंक यू वेरी मच। तो मैं मेन जो उस दिन की दूसरी बात मन जीते जगत जीत की बताना चाहता हूँ, वो आपने नहीं सुनी है। और बात है, उस दिन बाबा को ना ये मतलब हुआ कि आभास हो गया था सुबह से ही कि शायद आज मेरा ये अंतिम दिन है। तो बाबा ने यीशु दादी को बोला, भाई जितने भी पत्र लिखवाने हो तुम पत्र लिखवा लो। बाबा ने बोला पेंडिंग कॉइन, जो हमारी नक्की लेक का बिल्डिंग है ना, तो वो बिल्डिंग लेने की बात कुछ दिनों से चल रही थी, तो फाइल पड़ी हुई थी, बाबा ने उस दिन ही उस पर साइन करके बोला कि हाँ भाई ये बिल्डिंग ले लो, यहाँ पर सेवा के लिए कार्यक्रम रखना। इस तरीके से बाबा ने सारे काम उस दिन यीशु दादी को बोल करके, और सबसे बड़ी बात है रोज रात्रि क्लास होती है 8:45-9 बजे। अब पुराने लोगों को मधुबन में मालूम होगा, भोजन आदि करके सब क्लास, लेकिन उस दिन बाबा ने, हमारे जमुना प्रसाद भाई है ना, ये उस समय से बहुत पुराने भाई, उनको बुला के कहा कि आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा तो तुम सबको अनाउंस कर दो। और पहले एक घंटा रखा रहता था हिस्ट्री हॉल के पास ही जो जगह है, वो उन्होंने बजाया और सबको क्लास की, आज क्लास शाम को 6:30-7 बजे से शुरू होगी, तो सब लोग भोजन करके वहां पहुंच जाए। तो कहा 9 बजे क्लास होती थी, कहा उस दिन 7 बजे क्लास का बाबा ने प्रीपोन्ड कर दी, और फिर बाबा ने क्लास कराई। और बस ऐसी क्लास, वो तो आप सबने कई बार साकार मुरली सुनी होगी, लेकिन मेन बात क्या थी, बाबा को कई बार क्लास में खांसी आया करती थी, पुरानी एज इतनी ज्यादा थी, ठंडी का मौसम था तो खांसी आना स्वाभाविक था। तो लेकिन उस दिन मुरली में बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई। सुबह बाबा ने क्लास नहीं कराई थी, उस दिन आए, योग कराया, योग करा के चले गए क्योंकि खांसी की प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन शाम को इस योग, अपने योग बल से बाबा ने कर्म भोग के ऊपर संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली। एक बार भी बाबा को न खांसी आई, न कोई गला साफ करने की जरूरत पड़ी, जो इस बात का प्रतीक है कि अंत समय में भी हमारे सामने बहुत पेपर आएंगे, लेकिन जितने भी शरीर के कर्म भोग होंगे उन पर हमारा योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा। तो वो किस आधार पर हम कह रहे हैं क्योंकि बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में कहा है, अभी बच्चों के सामने वर्तमान समय के प्रमाण दो पेपर विशेष आने। कौन से दो पेपर? एक है परिवार का पेपर, ये परिवार है ना, परिवार की तरफ से पेपर बहुत आएगा, क्योंकि जब देखेंगे इतने पुराने पुराने भी बाबा के बच्चे, उनमें ये कमी, ये कमजोरी, ये अच्छा अभी तक भी ये भाई पुराने होकर भी ये बाहर का खा रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं या कुछ ऐसी बात, क्योंकि बाबा ने कहा राजधानी स्थापन हो रही है, उनको साधारण पद पाना है, इसलिए वो साधारण हिसाब से हैं। तो बाबा ने कहा परिवार का पेपर आएगा, बहुत डगमग करने वाली स्थितियां आएंगी, तो उस समय क्या करना है? उस समय ये सोचना है, एक तो कि हर आत्मा के तीनों कालों की स्थिति को हम सामने रखें, न केवल वर्तमान देखें कि अभी इसकी डगमग स्थिति है, बल्कि उसकी भूतकाल की स्थिति और भविष्यकाल की स्थिति को भी इमेजिन करें। जब शुरू में आते हैं कितने नशे में होते हैं, खुशी उमंगल लास में, और बाद में कई बार वो पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। एक तो हर आत्मा के हम तीनों कालों को सदैव देखें, और दूसरी बात कि हर आत्मा का ये सोचें, ये भगवान की चुनी हुई आत्मा है, मैंने भगवान को नहीं पाया, भगवान ने हमें चुना है। इतनी सृष्टि की लाखों करोड़ों आत्माएं, उनमें से कितने गिने चुनो को भगवान ने चुना है? क्यों? क्योंकि भगवान हमारे तीनों कालों को जानता है, आदि मध्य अंत को जानता है, इसीलिए किसी आत्मा पर भी हम कोई डाउट न करें, उसके पुरुषार्थ पर, उसके ऊपर उंगली न उठाएं। ये परिवार का पेपर बहुत बड़ा आना है, क्योंकि अति हलचल होगी, उसमें अति अचल रहने वाले बाबा के कुछ ही बच्चे होंगे जो कि विजयमाला का मणका बनेंगे। हलचल में हम हलचल की स्थिति में ना आए, और वो तब होगा जब हमारा मन अति अचल स्थिति में। तो किसी भी आत्मा को हम ये न देखें, तीनों कालों की दृष्टि, और ये भगवान की चुनी आत्मा है, और भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। अगर हम किसी भी आत्मा के पुरुषार्थ पर या उसके किसी बात पर डाउट कर रहे हैं, संशय ला रहे हैं, अरे इसमें ये इसका मतलब हम भगवान पे डाउट कर रहे हैं, अरे बाबा आपने ऐसी आत्मा को चुना, लेकिन भगवान ने तीनों कालों को देख करके उस आत्मा को चुना है। भले नाटक में उतार चढ़ाव की स्थिति होती है, बट अल्टीमेटली उस आत्मा का बहुत ऊंचा पार्ट है, अल्टीमेटली। इस कारण से किसी भी आत्मा पर एक तो संशय न रखें, एक पेपर परिवार का आएगा और दूसरा अपने शरीर का पेपर, ये अंतिम पेपर अपने शरीर का, शरीर में जो भी बची खुची रहे हुई बातें होंगी वो व्याधि के रूप में, बीमारी के रूप में निकलेंगी, अति कष्ट होगा। हम चाहेंगे याद करें, जब बहुत ही दर्द होगा, याद कहां से आएगी? तो उस पेपर को पार करने के लिए, परिवार का पेपर को पार करने के लिए, तो ये स्थिति होनी चाहिए कि ये भगवान की चुनी हुई आत्मा है, इसका आज भले ये पार्ट है, कल ये नहीं होगा, लेकिन शरीर के पेपर को पार करने के लिए बाबा ने कैसे पार किया? शरीर बना। सबसे बड़ी बात, जब चाहे हम शरीर में आए, जब चाहे हम शरीर से न्यारे हो जाए। बाबा की ये स्थिति हमने देखी। बाबा पार्टी मिलाने के लिए टीचर ले जाती थी और टीचर ले जाती थी बाबा के पास, तो बस बाबा आंख खुली हुई है, बाबा बैठे हैं, और टीचर जाके बोलती थी बाबा बाबा, तो कई बार बाबा को जैसे एक ऐसा जर्क सा लगता था, जैसे बाबा देह में कोई ध्यान की अवस्था में नहीं होते थे, लेकिन न्यारी स्थिति में, देह से जैसे न्यारी स्थिति में, और जब बाबा बाबा कह के, बाबा मैं फलानी पार्टी लाई हूं, दिल्ली से पार्टी लाई हूं, कलकत्ता से पार्टी, जहां से टाइम फिक्स होता था जो बाबा का दिया हुआ, तो वो जब टाइम होता था तो बाबा एकदम थोड़ा जर्क सा, अच्छा बच्ची पार्टी, हाँ हाँ लेके आओ बुलाओ, फिर बाबा एक एक बच्चे से मिलते थे, हर बच्चे को विदेहीपन की स्थिति का अनुभव कराते थे, टोली खिलाते थे और हालचाल पूछते थे। वो जाता था, दूसरा आता था, दूसरा जाता था, तीसरा आता था। तो शरीर के इस अंतिम पेपर से पास होने का एक ही साधन है, हमारी स्थिति को हम ऐसी मजबूत करें, जब चाहे हम देह से न्यारे हो जाएं, जब चाहे हम देह में आएं, पार्ट बजाएं और जो भी पार्ट मिला हुआ है वो बजाएं। और जब देह का पार्ट नहीं है, मानो थोड़ा समय खाली स्थिति का अनुभव है, देह से न्यारे हो जाएं। बाबा का ये बहुत पक्का अभ्यास था, इसीलिए बाबा को खास करके अंतिम समय का भी आभास हो गया था। तभी तो बाबा ने क्लास प्रीपोन्ड करी, रोज क्लास 9 बजे रात को होती है, अगर बाबा ने उस दिन 7 बजे करी। बाबा ने उस दिन कहा कि भाई आज जो पत्र है लिखा लो, बाबा ने उस दिन सारी बातें जैसे समाप्त करी। ऐसे ही हम बच्चों को भी ना ये स्थिति का अंतिम में अनुभव होना चाहिए, अब मेरा इस शरीर से हिसाब किताब पूरा हुआ, बाबा अब मैं आत्मा आपके पास आ रही हूं, उससे क्या होगा, अंत मते सो गति। अंत में हमारी जो मति होगी, जो बुद्धि होगी, जो याद होगी, वैसी हमारी गति होगी। अगर मेरी गति भी प्रकृति के तत्वों के आधार पर रही है, भूचाल आया, ये बिल्डिंग गिरी, छत गिरी, और इसमें अगर मेरा देह त्याग हुआ, फायदा क्या हुआ, अंत मते सो गति तो होगी नहीं, क्योंकि त्राही त्राही मची होगी, शरीर का कष्ट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये प्रकृति के तत्व भी मेरा साथ दे अंत में, अंत तक ये हमारे, क्योंकि कहा जाता है ये संसार पुरुष और प्रकृति का खेल है, पुरुष माने आत्मा, प्रकृति माने ये शरीर, 5 तत्वों का बना हुआ। जब आत्मा इस शरीर में आती है तो खेल खेलती है, जब आत्मा चली जाती है इस पुरुष प्रकृति से, शरीर भी निर्जीव हो जाता है। तो पुरुष प्रकृति के इस खेल में जब पुरुष विजयी रहता है वो ही सतयुग त्रेता होता है, जब प्रकृति विजयी होने लगती है वही द्वापर कलयुग, कलयुग का अंत तक होता है। अभी देखो कलयुग के अंत में ये प्रकृति, पुरुष एक बात चाहता है लेकिन प्रकृति अपनी बात करती है, इस कारण से पुरुष प्रकृति में तालमेल पूरा नहीं है। और कर्मातीत अवस्था का यही लक्षण है, पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरे के संपूर्ण रीति से सहयोगी होते चले। तो बाबा को उस दिन देखा, ऐसे ही मैं भी, जो गायन है ना, इच्छा मृत्यु का वरदान किसे था महाभारत में, किसे था, भीष्म पितामह। तो कोई बाबा ही भीष्म पितामह नहीं है, हमारी भक्त आत्माओं के सामने, हमारी प्रजा जो हमारी चल बनने वाली उनके सामने, हम आत्माएं भीष्म पितामह हैं। इस कारण से हमें भी अपने अंत मते सो गति, अगर हम चाहते हैं, हमें भी ये आभास हो जाना चाहिए, हाँ बाबा अब मेरा इस हिसाब किताब पूरा हुआ, मैं आत्मा आपके पास आई की आई। बाबा को जैसे पूरा हो गया था, इसीलिए बाबा ने ये सब करे। ऐसे ही हमें भी ये कब होगा, भीष्म पितामह की तरह आभास, जब हमें भी शरीर में आने का, शरीर से न्यारा होने का ये अभ्यास होगा जो बाबा को था, जैसा आपको मैंने बताया। और क्या था, जब बाबा को देखो खांसी आती थी, हम देखते थे, हाँ आपने हिस्ट्री हॉल देखा है ना, हिस्ट्री हॉल में बाबा की संदली के पास इधर ही एक ट्रांसलाइट का पिक्चर रखा रहता था, श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का। अब बाबा उसे देख के कई बार बहुत खुश होते, देखो बच्चे, बाबा कल जाके ऐसा मिशनू कृष्ण बनेगा। खांसी आती थी कई बार, बाबा की आंख में पानी जैसा भी आ जाता था, हम लोगों को लगता था बाबा को जैसे बहुत कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। तो शुरू में परिस्थिति वार करती थी, खांसी रूपी परिस्थिति, लेकिन तुरंत ही बाबा अपनी स्वस्थिति में स्थित, देखो बच्चे कल बाबा ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा और वहां तो सारे तत्व नए होंगे, नया शरीर मिलेगा, सारी दुनिया नहीं होगी, ये कोई व्याधि शरीर की नहीं होगी, खांसी नहीं होगी, और बस बच्चे कल हम ऐसी दुनिया में जाएंगे, इतनी खुशी होनी चाहिए। खुशी में क्या करना चाहिए, कग्गिया मारनी चाहिए बाबा, बताया करता था कई बार हा? इतनी खुशी में ऐसा, तो बच्चे कल बाबा जाके ऐसा बनेगा। तो जैसे ही बाबा की स्वस्थिति मजबूत होती थी, खांसी रूपी परिस्थिति तुरंत विदाई ले लेती थी। ये टेक्निक हमें समझनी है कि कोई भी परिस्थिति आए, संबंधों की परिस्थिति आए, कोई शरीर की परिस्थिति आए, परिवार की, ऑफिस की, कोई भी आए, हम अपनी स्वस्थिति को ऐसा मजबूत कर लें वो परिस्थिति के ऊपर हावी हो जाए। परिस्थिति हमारी स्वस्थिति पर हावी ना हो। परिस्थिति आई, सुना किसी का समाचार, उसका एक्सीडेंट हो गया, बड़ा सीरियस है एकदम, उसकी सीरियस की साथ साथ हमारी भी स्थिति, हमारा नियर एंड डियर है, डावाडोल होने लगती है। लेकिन चलो कुछ समय सेकंड हुई भी, सुना, लेकिन फिर स्वस्थिति को हम इतनी शक्तिशाली कर ले वो उस परिस्थिति पर हावी हो जाए और हमारी इतनी पावरफुल वाइब्रेशन, संकल्प, हमारा ऑरा इतना पावरफुल हो जाए कि वो उस परिस्थिति को भी डाइल्यूट कर दे, उस परिस्थिति को हमारे अनुकूल बना दे। दूसरे की इतनी सीरियस स्थिति है तो भी हमारे अनुकूल हो जाए। वो कब होगी? जब हमें अपनी स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाने का अभ्यास होगा, और ये उसी आधार पर ही होगा, मन जीते जगत जीत, मन के संकल्प के साथ विकल्प नहीं चलेंगे। और सबसे बड़ी बात जो अंत में हमने देखी है, समय के अभाव में बस वो बात संक्षिप्त में बताते हैं कि जब बाबा ने शरीर मुरली चलाई, बाबा ने बस मुरली चला के बाबा क्लास के बाहर तक आए, अच्छा बच्चों, मीठे मीठे बच्चों को गुड नाइट कहके अच्छा बाबा बच्चों से विदाई लेता है, छुट्टी लेता है। ये पहली बार बाबा ने वो अक्षर बोले, कभी भी नहीं, गुड नाइट वगैरह तो हमेशा गुड मॉर्निंग गुड नाइट, लेकिन बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है, ये बाबा ने पहली बार, क्योंकि बाबा को बहुत क्लियर था बस ये अंतिम मिलन है। और इस कारण से क्या हुआ, उस दिन देखा हिस्ट्री ऑल छोटा है, देखो यहां से यहां तक जाने में बाबा ने विशेष टाइम, एक कदम बाबा चलते थे, फिर बाबा घूम के फिर एक एक बच्चे को दृष्टि देने लगते थे, फिर बाबा थोड़ा एक कदम चले, जैसे बाहर जाते जाते भी बाबा को ये हो आज मैं बच्चों को संपन्न कर दूं, शक्ति रूप से भरपूर कर दूं। और बाबा की दृष्टि बार बार बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी के ऊपर आ जाती थी, टिक जाती थी, बाबा बहुत देर तक दादी को दृष्टि देते थे। फिर बाबा जैसे एक कदम बढ़े आगे फिर रुक जाते थे। तो इस तरह वहां से संदली से दरवाजे तक जाने में भी बाबा ने काफी समय लगाया कि आज बच्चों को मैं भरपूर करूं। और बस बाबा बच्चों से विदाई लेता है, छुट्टी लेता है कहके बाबा गए, और अंत में तो सुना ही है, दादी के हाथ में हाथ और बाबा ने जैसे देह त्याग किया। लेकिन आश्चर्य की बात तो उसके बाद देखिए, पुरुष कैसे प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है, खेल ही सारा पुरुष प्रकृति का है ड्रामा में। तो बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी की रात को अर्ली नाइट में, और सारी रात शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद 2-3 बजे बाबा का संस्कार किया गया, क्योंकि बड़ी दादी और सब बच्चों के टेलीग्राम आ रहे थे, फोन आ रहे थे, बाबा को रखो, शरीर रखो, हम आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं जो भी। और बड़ी दादी भी, बड़ी दीदी मनमोहनी दीदी भी बाहर टूर पर थे, उनका इंतजार खास हो रहा था। लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता रहा, न बाबा को कोई इंजेक्शन दिया गया, न कोई केमिकल लोशन लगाया गया दवाई, बिल्कुल नहीं, तो शरीर कुछ घंटों में ही काला पड़ जाता है और शरीर बदबू देने लगता है और अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है। लेकिन 21 तारीख को जब हम लोगों ने स्नान करा के शांति स्तंभ तक बाबा को अग्नि संस्कार के लिए लाए, देखा बाबा के शरीर में बहुत हद तक जैसे ये फ्लेक्सिबिलिटी थी और चमकता हुआ शरीर, वही गोरा रंग, बिल्कुल जरा भी काला नहीं पड़ा। उस समय की पिक्चर देखो। तो ये है, ये प्रकृति के ऊपर भी बाबा ने कैसे विजय प्राप्त करते। जब हम मन को जीत लेते हैं ना, तो मन तो ये आत्मा का अंग है, पुरुष है, और पुरुष ने फिर ये प्रकृति का जो शरीर लिया है ना, उसके ऊपर संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। तो हमें विजय प्राप्त करने का मतलब क्या कि हम लोग भी ऐसा पुरुषार्थ हो अंत में तक, जब शरीर तो सबको ही छोड़ना है हर एक को, लेकिन ऐसे हम इतनी इच्छा से शरीर छोड़ के बाबा के पास जाए और उसका आभास हमें बिल्कुल क्लियर होगा। बाबा ने कहा है अगर अंत में आपका ये कम्युनिकेशन कौन सा, ये वॉइसलेस कम्युनिकेशन है, ये तो मोबाइल तो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, बस कहीं से कहीं कोई बात कर ली, लेकिन अंत में ये सब कुछ काम नहीं करेगा, केवल एक वॉइसलेस, जितना हमारी निर्विकारी स्थिति होगी निर्विकारी कम्युनिकेशन ही काम करेगा। अब बाबा ने कहा मैं बंधा हुआ हूं बच्चों की रक्षा करने के लिए, बच्चों के ऐसे वैसे मृत्यु ना हो, बच्चों की रक्षा के लिए प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, हलचल होगी, धरती हिलेगी, बहुत तूफान आएंगे, सुनामी आएगी, फ्लड आएगा, सूखा पड़ेगा, मृत्यु के अनेक कारण बनेंगे, लेकिन अगर मेरे साथ बच्चों का वॉइसलेस कम्युनिकेशन हुआ, बाबा बंधा हुआ है बच्चों को राइट समय पर राइट टचिंग करने के लिए, और बच्चों के पांव वहीं बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, और बच्चे इस प्राकृतिक आपदा बहुत होगी, दुनिया मरेगी इन प्राकृतिक आपदाओं से, लेकिन बच्चों का बाल बांका नहीं हो सकता अगर हमने अपने रीति से इन प्राकृतिक तत्वों को ये मित्र नहीं बनाया हुआ। इस कारण से अगर हम चाहते हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ के जाएं, विजयी होके जाएं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉइसलेस कम्युनिकेशन और प्रकृति के इन तत्वों के साथ मित्रता करनी होगी, क्योंकि मित्र हमेशा मित्र की रक्षा करता है। एक एक बस हम गुण देंगे, बहुत मित्र है, जल का सबसे बड़ा गुण कौन सा है, शीतलता, हाँ, लेकिन शीतलता भी है, एडजस्टमेंट भी है, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी, ये जल का सबसे बड़ा गुण है, फ्लेक्सिबल। तो देखो गिलास में जल को लो, गिलास में सेट हो गया, कटोरी में लो, कटोरी में हो गया, चम्मच में लो, चम्मच में हो जाएगा, हर जगह जल सेट हो जाए। ऐसे मेरा भी संस्कार ऐसा हो, स्वभाव ऐसा हो, नेचर ऐसी हो मेरी, मैं हर आत्मा के साथ एडजस्ट होके चल सकूं। ये ना कहूं कि भाई इनके साथ एडजस्ट होना आसान है, इनके साथ एडजस्ट होके चलना बड़ा मुश्किल है। आज बहुत सारी दुनिया की समस्याएं लैक ऑफ एडजस्टमेंट के कारण है, सास बहू का झगड़ा, बाप बेटे का, भाई भाई का, एडजस्ट होके नहीं चल सकते। तो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी हमारे संस्कारों के अंदर, उससे क्या होगा, ये जल हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जल के साथ हमने मित्रता कर ली, जल का फ्लेक्सिबिलिटी का संस्कार है, हमने फ्लेक्सिबिलिटी का पूरा संस्कार धारण कर लिया, हर आत्मा के साथ हम एडजस्ट होके अगर चल सकते हैं, तो जल कभी भी हमारे दुख का, अशांति, मृत्यु का कारण नहीं। जितनी सुनामी आएगी, जितना फ्लड आएगा, लेकिन बाबा ने कहा है मैं बच्चों की रक्षा को बंधा हुआ हूं, ऑटोमेटिकली। बहुत सारे कहानियां हैं मधुबन में, तो लेटर आते हैं, चाहे लाटूर का हुआ हो, चाहे भोपाल का गैस ट्रेजेडी हो, चाहे चेन्नई का, वो बहुत सारे, उनमें नहीं जाते क्योंकि समय हो रहा है। तो ऐसे ही अनेक जल के गुणों के साथ, शीतलता का गुण, फ्लेक्सिबिलिटी का, एडजस्टमेंट का, आगे बढ़ने का, ये सब जल के गुण सोचना अपने, और फिर वो गुण धारण करना, तो जल कभी भी दुख अशांति का कारण। दिल्ली का तो जल से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, जल से ज्यादा प्रॉब्लम किसका होने वाला है, बम्बई। दिल्ली का किससे होगा, अर्थक्वेक से, क्योंकि अर्थक्वेक में ना दिल्ली उस जोन में ज्यादा आया हुआ है जो अर्थक्वेक प्रॉन जोन है, तो उसके लिए पृथ्वी का कौन सा गुण धारण करेंगे, सहनशीलता। हाँ, अपना हम ना पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है देने का, दातापन का। हर चीज पृथ्वी देती है, बीज बो दो, हजार बीज पैदा, पेड़ हो जाएगा, हजार बीज पैदा हो जाएंगे। पृथ्वी पानी देती है, पेट्रोल देती है, फल देती है, सब्जी देती है, गेहूं चावल सब चीज पृथ्वी देती है, दाता। ऐसे ही हम भी ये अनुभव करके चले, मुझे सदा सबको देना है, किसी को खाली हाथ नहीं भेजना। देने की कोई स्थूल चीज देने की बात नहीं है, मेरे सामने जो आया उसे प्रेम, शांति, सहयोग, सहिष्णुता, ऐसी चीज दें जिनमें एक पैसे का खर्चा नहीं होता और हरेक के साथ सहानुभूति, हरेक के लिए सहयोग की भावना। तो पृथ्वी का जितना ये गुण धारण किया होगा तो जितने भी अर्थक्वेक आएंगे दिल्ली वाले कभी भी उस अर्थक्वेक के भोगी नहीं बन सकते। क्यों? जिसने ये धारण करा होगा, जैसे ही अर्थक्वेक आने वाले, देखो आज के छोटे मोटे जानवर होते हैं, पृथ्वी में रहते हैं, हम लोगों को पढ़ाया गया था एमटेक में, और सारा संसार उस बात को मानता है, छिपकली होती है, सांप होते हैं, केचुए होते हैं, जो ऐसे पृथ्वी के अर्थक्वेक आने वाला होता है उससे पहले ही इन जानवरों को आभास हो जाता है, तुरंत निकलते हैं और ऐसी जगह सेफ जगह पर जाने का वो करते हैं। और ये वास्तविकता है, ये कोई कल्पना की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन प्रकृति के साथ ज्यादा हार्मनी में है, दे आर मोर इन हार्मनी विद नेचर। तो इस कारण से हमारा भी जीवन जितना प्रकृति युक्त होगा, हम प्रकृति जीत बनते चले। ये शरीर प्रकृति है, इसका स्वभाव काम क्रोध लोभ मोह, जो सारा आत्मा का प्रदर्शन तो इनके द्वारा ही होता है ना, ये जितनी हमारी पंच इंद्रियां हैं, तो इस कारण से इनको जितना हम वश में करके, आंख नाक कान आत्म, जो बाबा कहता है आंख को, आंख के लिए खास बोलता है, तो आंख के लिए क्या करना है, साक्षी दृष्टा हो गया, वो तो बहुत बड़ा है, हा? देखो दृष्टा एक होती है आंख, साक्षी दृष्टा जो बन जाएगा वो अंत में पूरा मन जीते जगत जीत हो जाएगा। और वो किस रीति से बनेगा, हम इस रीति से, ये एक तो दृष्टि है, आंख है दृष्टि, दृष्टि खिड़की खुद नहीं देखती, खिड़की के द्वारा देखने वाला कोई और, इसके द्वारा आत्मा, तो आत्मा दृष्टा है, इसीलिए साक्षी दृष्टा का है, साक्षी दृष्टि नहीं। तो आत्मा इस खिड़की के द्वारा देखती है, ये दृष्टि है, मैं दृष्टा हूं आत्मा, और बाहर जो देख रहे हैं वो क्या है, दृश्य है। इस स्थिति में हम रहे कि मैं आत्मा दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा इन दृश्यों को देख रही हूं, तो क्या होगा, जितना इस स्थिति में होंगे तो इतिहास में हमारे पूरा भक्ति मार्ग द्वापर युग से जो इतिहास लिखा जाएगा उसमें हमारे दृष्टांत लिखे जाएंगे। अगर इस अंतिम समय में साक्षी दृष्टा होके हम पार्ट बजाते हैं, और ये क्या होगा, कब होगा, जब पांचवी बात है, जब हमारा दृष्टिकोण एटीट्यूड वो जितना हमारा पॉजिटिव होगा, वो जितना बाबा ने बताया कल्याणकारी और आत्मा के तरफ होगा, उतना उतना हम साक्षी दृष्टा होंगे, और अंत समय में इतने पार्ट चलेंगे, विनाश के पार्ट त्राही त्राही, उस समय हमारी ये साक्षी दृष्टा स्थिति, ये हमें हलचल में नहीं आने देगी। बाहर अति हलचल होगी, हम अति अचल होंगे, लेकिन एक ही कंडीशन है, साक्षी दृष्टा। तो जल और पृथ्वी की बात सुन ली, और वायु का कौन सा गुण है, हल्कापन, और वायु हर चीज को ऊपर उठाती है, पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है। ऐसे ही अगर हमने वायु का हल्केपन का गुण धारण किया होगा कि चाहे जो भी परिस्थिति आए हम भारी ना, जब भारी हो जाते हैं मूड ऑफ हो जाएगा, किसी से बोलने की वो नहीं होगी, कई ऐसी स्थितियां आती है, लेकिन वायु की तरह हल्के रहे। देखो वायु ही हमारी प्राण वायु है, एक मिनट के लिए आप अगर सांस रोकने की कोशिश करो कितने कष्ट होगा, नहीं, प्रति पल ये वायु, ये हम सांस लेते रहते हैं, तो ये प्राण वायु है। तो संगम युगी ब्राह्मणों की हमारी प्राण वायु कौन सी है, हमारे प्राण कौन से हैं संगम युग में, उमंग और उत्साह, हमारी खुशी कभी गायब ना। तो अगर ये उमंग उत्साह की प्राण वायु हम रहे, ये हमें सदा हल्कापन का आभास कराती रहेगी तो क्या होगा, जितना साइक्लोन आएंगे, हवा की स्पीड चलेगी 200, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर उड़ा के ले जाएगी, बहुत भयंकर विनाश का ये कारण बनेगी वायु। लेकिन अगर वायु का ये गुण हमने धारण किया होगा, वायु को मित्र बनाया होगा, तो मित्र कभी भी मित्र की जान नहीं लेता, हम सदा विजयी होकर वायु के साथ अपने घर चलेंगे। और चौथा तत्व कौन है, आकाश, विशाल, कितना बड़ा विशाल है आकाश, आकाश तत्व इतना विशाल है, ऐसे ही हमने जितनी विशालता धारण की होगी ना, विशालता का भाव क्या है, किसी की कमी कमजोरी को अपने दिल में नहीं रखना। हर तरह की आत्माएं हैं कमी कमजोरी वाली कई, लेकिन उसकी एक चीज को अगर हमने अपने दिल में अगर रख लिया ना, तो क्या होगा, वो बात बार 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 कचोटती रहेगी और बदले की भावना या कोई ऐसी भावना हमारे मन में आएगी जो हमें भारी कर देगी। इसीलिए विशालता क्षमा का भाव। आप देखो जितनी भी महान आत्माएं होती है ना, वो महान आत्माएं सबसे बड़ा गुण उनमें होता है क्षमा का। और हम क्षमा तब कर सकते हैं जब किसी की कमी कमजोरी को नहीं रखा होगा, अब भूलने की बात होगी, अब बस उसे क्षमा अगर करा होगा, उतना हमारा हृदय विशाल होगा, उतना आकाश का गुण धारण किया होगा, तो फायदा क्या होगा, आकाश मार्ग से आने वाली जितनी भी विपदा होंगी, एटम बम, हाइड्रोजन बम, रॉकेट, मिसाइल या बादल फटने की घटनाएं जिसमें अनेक लोग, आकाश जो है हमारे विनाश का कारण नहीं बनेगा, हमारी रक्षा का कारण बनेगा। क्यों, क्योंकि आकाश तत्व को हमने मित्र बना लिया, और इसीलिए इन तत्वों को मित्र, और अंतिम है अग्नि, सूर्य। हाँ, तो सूर्य के लिए जब अग्नि तत्व में विशेष गुण कौन सा होता है, है? हाँ, रूप बदल देता है। इस तरीके से अग्नि तत्व की तरह हमने अपना ज्वालामुखी रूप अगर धारण किया होगा ना, तो बाबा ने यही कहा कि अशांत आत्मा आए, आपके अग्नि रूप के कारण उसका रूप परिवर्तन हो जाए और शांति की स्थिति में स्थित होके वो चली जाए। रोती हुई आत्मा आए, आपका ऐसा ज्वालामुखी रूप हो वो हंसती हुई चली जाए, रूप परिवर्तन हो जाए, अग्नि का जो गुण होता है। और ये जैसे आपको बताया, अग्नि के गुण के इसके लिए ही वो कंटिन्यूटी की जरूरत है। कभी हम योग में होते हैं, भट्टी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, और कभी बिल्कुल अगर ब्रेक डाउन ना हो, कोई भी दिन ऐसा ना हो जब हमारी योग का कुछ पर्टिकुलर चार्ट अगर हमारा कम ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी दिन बिल्कुल वैनिश हो जाए, तो उससे क्या होगा कि फिर उस स्थिति को आने के लिए बहुत मेहनत लगनी है। इसलिए जितने भी हम बिजी रहें, कोई भी बात हो, अपना हम मिनिमम लेवल मेंटेन करके जरूर रखें, कम से कम 3 घंटे का या 4 घंटे, अमृत वेले का योग, सुबह का योग क्लास, शाम का योग, रात्रि का, तो उससे क्या होगा, हम अवश्य ही बाबा की तरह कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके ना, और ये मन जीते जगत जीत, और जहां मन जीते हो गया और जगत के अंदर तो ये सब चीज आ जाती हैं। जगत में क्या क्या आ जाते हैं, मनुष्य आते हैं, जीव जंतु, प्राणी और प्रकृति के 5 तत्व, ये सब इसीलिए तो ये, इनको जीतने का मतलब क्या है, द्वापर युग से भी देखो, उन्होंने जीता हुआ था प्रकृति के, तानसेन वो ऐसी राग निकालता था दीपक जल जाया करते थे, ऐसी राग निकाले म्यूजिक बारिश होने लगती, तत्वों के ऊपर इतना कंट्रोल। ये द्वापर युग की जब आत्माएं कर सकती हैं, द्वापर या कलयुग के अंत की आत्माएं, तो क्या हम चैतन्य आत्मा, ये हमारा ही गायन है। जब ऐसी आत्माएं होते थे, जंगल में सन्यासी होते थे, बड़े बड़े भयंकर पशु आया करते थे, उनके सामने मूक प्राणी बन के सम्मुख बैठ जाया करते, क्यों, क्योंकि उनके अंदर इतनी शक्ति। ये प्रैक्टिकल बात है, ये कोई इमेजिनेशन की बात नहीं है। तो इस कारण से अभी आवश्यकता यही है, बाबा कहता है अपने मन के साथ साथ इन तत्वों को भी आपको शुद्ध करना है, पावन बनाना है, और इन तत्वों को भी रोज क्या करें, हम इनके साथ योगदान करें, वार्तालाप करें इनके साथ। देखो कैलिफोर्निया अमेरिका में कितने स्टेट है, वहां बहुत भयंकर भूचाल आया था, और ये इसके साथ मैं समाप्त करता हूं। और जब बहुत भयंकर भूचाल आया, वहां एक प्रोफेसर था, चारों तरफ सब बिल्डिंग गिर गई और सब कुछ हो गया, एक प्रोफेसर का मकान बिल्कुल इंटैक्ट रहा, रिट्रीट हाउस, कांच भी नहीं टूटे उसके। तो सारे मीडिया वाले गए, लोग गए, आपने भाई किस मटेरियल का बनाया है? उसने कहा मटेरियल तो मेरा कोई खास नहीं, जो सबका मटेरियल होता है वही मटेरियल है, बस मैं रोज वार्तालाप करता हूं इन तत्वों के साथ, धरती माता के साथ वार्तालाप करता हूं, ए धरती माता आप माँ हो, मैं आपका पुत्र हूं, आपको मेरी सदा रक्षा करनी है और आपको मैं वंदना करता हूं, नमन करता हूं, आपके गुण धारण करने का मैं प्रयास करता हूं। वो कोई भीखे आत्मा नहीं है, लेकिन प्रोफेसर उसने कहीं पढ़ा होगा या कोई सीखा होगा, तो धरती से वार्तालाप करके हमें खुद याद है, हमारी माताजी वगैरह, हम लोग टाइम जब उठते थे बिस्तर से ना, पलंग से उठ के क्या करते थे, धरती को वो पूजा, पांचों तत्वों को, चींटियों को थोड़ा खिला दिया, चिड़ियाओं को खाना, तत्व और ये पशु पक्षी जीव जंतु, वास्तव में ये साधारण जीव जंतु की बात नहीं है, हम तत्वों को भी देवता की तरह पूजते थे, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, धरती माता आदि आदि। अभी रियल सेंस में इन्हें पूजने का भाव ये है, हम इनके गुण धारण करें, इनको कोई आघात न हो, और साथ ही साथ इनके प्रति हमारा दृष्टिकोण सदा पॉजिटिव रहेगा, तो हम मन जीते जगत जीत के साथ साथ प्रकृति जीते जगत जीत भी बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। कहते हैं अनुभव की बात ही निराली होती है। वक्ताएं तो वक्ता तो बहुत होते हैं, लेकिन भाई जी ने जो आज हमारे साथ शेयर किया उसे कहेंगे प्रैक्टिकल गाइडेंस, प्रैक्टिकल शिक्षा, जो हमारे आगे पेपर्स आने वाले हैं। भाई जी ने कितने सुंदर तरीके से उन्हें हमें समझाया कि कैसे जीतना है। मन के लिए बहुत लोगों ने कई बातें कही, मन जैसे घोड़ा है, मन तो चंचल है, मन तो पंछी है, और भाई जी ने क्या कहा, मन पुरुष है, मन पुरुष है, और उसे इस प्रकृति पर जीत पानी है। तो कितने आसान तरीके से हमें समझा दिया कैसे मन जीत जगत जीत बनना है। एक ताली, एक हाथ की ताली से भाई जी का दिल से आभार प्रकट करेंगे हम सब। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी।